हरे कृष्णा। हाँ सबका कृतज्ञ हूँ कि आज सुबह आप सब आए हैं और मुझे कुछ भगवान के संदेश के बारे में कथा करने का ये सौभाग्य मिला है। तो मैं एक विवादास्पद विषय पे आज चर्चा करूँगा। तो जब मैं अबू धाबी में था तब एक अबूधाबी नहीं जब मैं बहरीन में था वहाँ से आया अभी, तो वहाँ पे एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा कि उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिला था कि एक स्त्री थी, वो बोले लड़की थी, बोली थी अगर भाई मुझे चाहिए तो मुझे रावण जैसे भाई चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि रावण हमेशा शूर्पणखा के साथ रहा और शूर्पणखा का आदर सम्मान बचाने के लिए उसने राम से भी युद्ध कर लिया, और उसके विपरीत मुझे पति कभी राम जैसे नहीं चाहिए क्योंकि जब समय आया तो राम ने सीता का त्याग कर दिया। तो भी ये जो है शास्त्र है, क्योंकि जो रामायण महाभारत यह हमारे संस्कृति में बहुत प्रचलित है, तो अनेक लोग क्या करते हैं और ये शास्त्रों का आधार लेकर खुद की बातों की ओर आकर्षण लेना चाहते हैं। तो शास्त्रों का कुछ उल्टा पुल्टा जो विवरण करके और लोगों के मन को उत्तेजित विचलित करते हैं। तो ये जो रामायण में संदर्भ है सीता के, सीता को राम जब भेज देते हैं दूर, सीता को थक वनवास भेज देते हैं, तो वैसे क्यों किया उन्होंने वो हम समझने का प्रयास करेंगे आज। तो उसके पहले सबसे पहले क्या रावण एक आदर्श भाई था, यह अगर हम चर्चा करनी है तो हमें पार्श्वभूमि देखनी है। वास्तव में जब राम जब पहले शूर्पणखा अपने भाई दूसरे भाई होते खरदूषण उनको उकसाती है और कहती है कि आप आके उन बदला लो मेरे अपमान का, तो तभी तो वो खरदूषण आते हैं अपने सारे 14,000 राक्षसों को साथ में लेके और राम अकेले उन सब का वध कर देते हैं। त्रिशिर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर भी होता है, उनका भी वध कर देते हैं। तभी अकंपन नाम का वो बच जाता है और वो भागते भागते जनस्थान से लंका चला जाता है और रावण को सारा वर्णन करता है कि आपका बैटेलियन था, आपकी जो सारे सेना का विभाग था जो जनस्थान में था उसका विनाश हो गया है, किसकी इतनी जरूरत हुई ऐसे करने की। रावण क्रोधित हो जाता है, मैं अभी जाके उसे बदला ले लूंगा। तो कंपन कहते हैं कि इसका पंगा मत लो आप, इसके हाथ में मत पड़ो आप। तो जब रावण सुनता है तो गंभीर हो जाता है, फिर जानता है कि अकंपन भी एक शक्तिशाली योद्धा है और वो जानता है अगर अकंपन कह रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए और वैसे इस अकेले अमानव ने इतने सारे राक्षसों को हरा दिया है, सुनूर कोई साधारण नहीं होगा। और उस रावण को भी याद होता है कि उसमें मानवों से उसको इम्यूनिटी, उसको संरक्षा नहीं थी उस वर्ग के अनुसार, तो इसीलिए सोचता है कि छोड़ दो कुछ करना नहीं। उसके बाद शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा आती है और जब वो आके रावण को कोसने लगती है और कहती है वो कि तुम कैसे राजा हो, तुम कैसे भाई हो, तुम्हारे एक अपने बहन का अपमान हुआ है, तुम्हारे एक नागरिक का अपमान हुआ है, तुम ऐशो आराम में रह रहे हो, तुम अपना कर। तो जब रावण सुनता है क्या हुआ उसको पूछता है, तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तभी वो बताती है कि राम पहले जब रावण का ऐसे अपमान होता है शूर्पणखा बोलते तुम अपना रहे हो तो तुम एक आसक्त राजा हो, उसे भोग करना चाहते हो, अपने राजा की जिम्मेदारी निभाना नहीं जानते तुम। और राम का नाम सुनता है कि राम ने ऐसे किया है तो जो क्रोध रहता है ठंडा हो जाता है उसका। और शूर्पणखा ये देखती है कि अभी रावण की प्रतिक्रिया कुछ रावण कुछ करने के लक्षण नहीं दिखा रहा है, तभी वो एक दूसरा उपाय करती है। और दूसरा क्या उपाय करती है, वह रावण का अगर क्रोध नहीं उकसा सकते हैं तो रावण का, और वो कहती है तभी रावण उसे कहता है देखो परेशान किया, फिर उन्होंने तो आक्रमण किया, गलती तुम्हारी नहीं है। तो रावण इस तरह, क्योंकि रावण सारे समाज के सामने अपने अपने तो वो उसका जो दोष है शूर्पणखा पे डालने का प्रयास करता है कि तुमने, तो वो बोलती है वास्तव में शूर्पणखा भी क्या है, सब जो लोग होते हैं इतिहास को जो भी वृत्ति वो आप सो ऐसा इंग्लिश में कहा होता है हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विनर्स। तो इतिहास पूरा वहां पे राम की बहुत ही सुंदर है, और मैं सोच रही थी वर्णन करने लगती, और राम जो है रावण जो है बड़ा कामुक होता है, ऐसे ही सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनने लगता है हो जाता है, और फिर वह षड्यंत्र बना लेता है। तो यहां नहीं है कि रावण ने रंका के अपमान का बदला लेना चाहता था, उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि अपने काम का पूर्ति करने के लिए वह उसने सब कुछ किया। और शूर्पणखा भी वहां पे जब गई थी वो राम के बारे में रावण के बारे में सोची नहीं थी, वो पहले तो वो अपने पहले वो जंगल में बैठे उसने क्या देखा, उसको कुछ मुझे कुछ भोजन मिल जाएगा। तो फिर जब वो गई वहां पे उसने राम को देखा तो जो उसका लंच बॉक्स था वो उसका मैरिज पार्टनर बन गया। ऑलरेडी विवाह हो गया, सीता का करना पड़ेगा, क्या करूं, इधर उधर सोचने लग गई। तो पहले तो फिर सोचने लगी सीता ही है उसको। तो अभी नाक काटने की जरूरत क्या थी वहां पे, वहां पे वो उसने बहुरूपी थी वो, और उसने एक अलग रूप ले लिया था जिससे कि वो खुद को बहुत आकर्षक प्रतीत कर रही थी। तो उसको अपना काम अपनी हवस जो पूर्ति के लिए वो किसी जान तक लेने के लिए आ गई थी, तो उसको उसके लिए रामचंद्र ने दिखाया कि जो हवस वास्तव में उसका आधार उत्तेजन से उस मोह से छुड़ाने के लिए, तो इसमें वो सीता का के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। और रावण भी अपने हवस से ही कार्य कर रहा था, और इसमें कोई भाई बहन के निस्वार्थ भाई चाहिए तो फिर उसकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। और वास्तव में बाद में बताया रावण ने क्या, शूर्पणखा का पहले एक विवाह हुआ था एक असुर से, उसका नाम था दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वास्तव में, तो जो जो था तो ये बड़ा शक्ति, और रावण को एक बार लगा कि ये मेरा कभी शायद मुझसे ही मेरा जो राज सिंहासन है छीन लेगा, इसीलिए एक और इस... तो बाहर से तो ऐसा लगा कि उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, पर अंदर से क्या था, उसको बलि का बकरा बना दिया गया था। और जब शूर्पणखा को ये पता चला तो बड़ी क्रोधित हो गई वो, और तभी वो सोच रही थी कि ये मेरे भाई ने मुझे विधवा बनाया है, इसीलिए तो उसको भी सिर्फ मेरा नाक कटा है उसके लिए राम से बदला लेना है, ऐसे नहीं था। उसको क्या सोचा था कि ये राम इतना शक्तिशाली है तो होगी तो रावण राम के प्रति कुछ अपराध करेगा, फिर राम इस तरह से इसने मेरे पति का अपराध करवा दिया। तो वास्तव में इसमें भाई बहन के निस्वार्थ का कुछ 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 सवाल ही नहीं उठता है वास्तव में। तो ये हो गया। तो वहां पे अभी अगर हम राम ने जब सीता को वनवास में भेजा तो वैसे क्यों किया, सबसे पहले हमें देखना है कि हर एक शास्त्र का एक भाव होता है। और कोई लोग कहते हैं कि राम अपने जो ख्याति थी, अपना रेप्यूटेशन था, इसके प्रति उन्होंने अपने पत्नी का भी त्याग कर दिया। तो ये केवल ख्याति की बात नहीं है, ख्याति का एक सवाल है उसमें, पर उससे और महत्वपूर्ण चीज है। अगर सिर्फ अगर ख्याति या नाम या जो खुद को मैं समाज में कैसे दिखता हूँ इमेज वही बात होती तो वही प्रभु श्री रामचंद्र दूसरे अवतार में कृष्ण के रूप में आते हैं। और कृष्ण के रूप में वो क्या करते हैं, एक असुर होता है भौमासुर नाम का, और इस भौमासुर ने बड़ा शक्तिशाली असुर था और उसने अनेक राजाओं का उनको बंदी बना लिया होता है, और फिर वो राजाओं की जो कन्याएं होती होते उनको भी बंदी बना लिया होता है। तो उसकी योजना थी, तो ऐसे 16,000 राजा बंदी बना लिया होता है, और उसका उसका योजना होती है कि वो 16,000 राजाओं को भैरव को बलि में अर्पण कर, फिर उसके वो सब राजाओं को अर्पण करेगा, फिर उनकी जो राजकुमारी है उनसे वो संग करेगा। तो अभी ऐसे समय में तो तभी वो जो राजा है संदेश भेजते हैं कृष्ण को कि हमें बचाओ, बड़ा प्रार्थना पूर्वक संदेश भेजते हैं, कृष्ण आते हैं वहां पे और कृष्ण भौमासुर का वध करते हैं। तो उसके बाद में वो राजाओं और फिर वो राजकुमारियों को छुड़ाते हैं। तो वो राजकुमारियां कहती है तभी कि अभी क्योंकि हम किसी के हमारा किसी ने अपहरण किया है तो हम किसी और के घर में रहे तो अभी हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो तभी कृष्ण कहते हैं तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें अभी आजाद कर दिया और क्या चाहती हो तुम, अरे कि तुम हमें स्वीकार। तो तभी कृष्ण क्या करते हैं, उन सबको अपने रानी की इज्जत देते हैं, सबको अपने रानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और अगर कृष्ण वैसे नहीं करते थे तभी तो उनको कोई शायद स्वीकार नहीं करता था, तो उनको बड़ा ही घृणित पद से शायद उनकी परिस्थिति हो जाती थी। तो क्या किया यहाँ, अगर ख्याति की ही बात होती तो कृष्ण वो सब रानियों को क्यों स्वीकार करते, राजकुमारी को अपनी रानियां क्यों बनाते। तो वही तो यहाँ पे उनका कोई संबंध था ही नहीं, भगवान ने उनका संबंध बना, उनकी जो समाज में इज्जत है वो बनाई रहे। फिर अगर इज्जत की ही बात होती तो कृष्ण ऐसे क्यों करते। तो ये कहने का जो भी कार्य होता है उस व्यक्ति के बारे के कुछ निष्कर्ष नहीं करना चाहिए। अगर है कि उसने अपने इतना वो नाम के प्रति तो ऐसा भाव नहीं है। तो व्यक्ति जो है अलग अलग जीव व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रसंग आते हैं, निर्णय करना होता है। तो वही व्यक्ति वही भगवान यहाँ हम कृष्ण लीला में देखते हैं तो बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, किसी और का नाम बचाने के लिए उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर वो सीता को क्यों त्याग करते हैं, सीता को क्यों बोलते हैं तुम वनवास चले जाओ। तो सबसे पहली बात है कि हर एक शास्त्र का एक भाव होता है और सब कुछ जो उस शास्त्र है उस, तो रामायण की शुरुआत में वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं नारद मुनि को कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका आदर्श चरित्र है, कोई सर्वगुण संपन्न ऐसा कोई व्यक्ति है तो मुझे उसके बारे में बताओ। और फिर तभी बताते कि राम के बारे में बोलते हैं। और संपूर्ण रामायण में अलग अलग गुण दिखाए गए हैं पर सबसे कंसिस्टेंट, सबसे सारे रामायण में जो अगर एक गुण में सबसे अधिक दिखता है हर जगह पे, वह है त्याग का गुण। तो हर जो भी आदर्श व्यक्ति है रामायण में वह क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। अभी जो क्या सही है और यह क्या गलत है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि त्याग करना है। यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर जब राम को वनवास भेजा जाता है पहले, तो तभी राम कह सकते थे क्या है, मैंने क्या गलती है, मैंने तो अभी तक बिल्कुल नेक जीवन जिया है, मैंने किसी के प्रति कोई अपराध नहीं किया है और मुझे अभी राजा बनने वाला हूं, तुरंत मुझे आप मुझे जेल, आप मुझे जंगल भेज रहे हैं, तो यह जो है बहुत ही बड़ा अन्याय है और मैं ऐसे क्यों सहूं। तो अगर हम नैतिक दृष्टि से देखते हैं तो राम कह सकता था कि मैं क्यों जाऊंगा जंगल में, मैंने क्या गलती की है, मेरी कोई गलती नहीं है। पर तभी राम क्या सोचते हैं, सही इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कर्तव्य क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरा कर्तव्य क्या है कि मेरे पिता का आदेश पालन करना है। जी वहां पर लक्ष्मण बड़ा क्रोध हो जाता है, लक्ष्मण कहता है कि तुम क्यों जाओ जंगल में, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम युद्ध करो। बोले कि तभी राम कहते हैं कि वास्तव में जब मैंने कहके के मुंह से सुना वो वचन कि मुझे 14 साल वनवास जाना है, तभी मैं समझ गया कि यह मेरे पिता की इच्छा नहीं है पर ये पिता के बंधन है, तो मैं उनका आदर करूं। तो तुम जानते हो कि वास्तव में कैकेयी भी मुझे कितना प्यार करती थी, कैकेयी हम सबको प्यार करती थी अपने पुत्र के समान। तो लक्ष्मण कहता है कि वाह ठीक है, तो राम कहते हैं कि कैकेयी का जो प्यार हमारे प्रति स्नेह था वो गंगा के समान था। लक्ष्मण अभी तक क्रोधित है, हर बात से बात प्रतिकार करने वाले खत्म, मतलब मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है, एक रात में गंगा तो तभी राम कहते हैं कि वास्तु इसीलिए जब मैंने कैकेयी से वचन सुने तो मैं समझ गया कि ये सब नियति का खेल है, ये सब दैव का खेल है, इसीलिए मैंने इसको स्वीकार किया। तभी लक्ष्मण कहता है कि कायर ही अन्याय को दैव बोल के स्वीकार कर लेते हैं, जो वीर होते हैं वो अन्याय का प्रतिकार करते हैं, तुम्हें इस अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और लक्ष्मण इतना क्रोध हो जाता है, वो कहता है कि अगर जो भी तुम्हारे राज्याभिषेक के बीच में आएगा वो, और इतने दशरथ महाराज के ऊपर इतने क्रोध होते, वो दशरथ महाराज को अपने पिता के नाम से भी नहीं बोलते, और ये राजा है, ये राजा भी अपने पत्नी के किसी काम से आसक्त होकर अंधा हो गया, तो राजा बीच में आ जाएगा तो मैं अभी ये भी, अब तक तो राम सांत्वना करने का प्रयास कर देगा। अभी राम कहते हैं कि अगर तुम्हारे तीर हमारे पिता के पास जाएंगे तो वो मेरे सीने से पार होके जाना पड़ेगा। जहां राम ऐसे तो लक्ष्मण थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो राम कहते हैं कि मुझे मेरे पिता के वचनों का पालन करना है। तो यहाँ पे वो क्या भाव क्या है, त्याग का भाव है कि सही क्या है गलत क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, जो ऊंचा कर्तव्य क्या है वह देखते हैं। और वही भाव है जब सीता राम के साथ जाती है, राम तो सीता से कहते हैं कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रहो और किस तरह तुम्हें रहना चाहिए उसके बारे में उपदेश भी देते हैं। सीता कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी क्योंकि मेरा कर्तव्य यह है, तो अभी कोई को कह सकते थे कि मैं तो राजकुमारी हूँ और मेरे पिता ने मेरा हाथ एक राजकुमार को दिया था, भी तुम जा रहे हो, मैं क्यों हूँ तुम्हारे साथ, वो कह सकते थे। पर यहाँ पे सीखा जाती है वो भी त्याग का भाव। लक्ष्मण भी जब जाता है तो क्या है, लक्ष्मण को जाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा सीता और राम पति पत्नी है तो पत्नी को पति के साथ जब पते जाना चाहिए, पर भाई को अपने भाई के साथ कोई जरूरत नहीं थी। पर जब लक्ष्मण जाता है वो क्या है, उनका त्याग है। जब लक्ष्मण तैयार होते जाने को तो लक्ष्मण की पत्नी होती उर्मिला, वो कहती मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं कि मैं, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मुझे तुम्हारा देखभाल, तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी, मुझे राम और सीता की सेवा करनी है। तो उर्मिला कहती नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कोई देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद को संभाल लूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा में मदद करूंगी। तो लक्ष्मण कहते नहीं, अगर तुम मेरी सेवा में मदद करने जाती हो तो आप एक दूसरी सेवा करो। कहते हैं कि मैं दोनों कर्तव्य है, तो अगर मेरा बड़ा भाई और मेरे दोनों कर्तव्य निभा सकता हूँ, पर क्योंकि अभी दो जगह पे है तो फिर कर्तव्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं मेरे भाई के बड़े भाई के जा रहा हूँ, तुम जो मेरा माता पिता उनको शांत बना दो। तो यह भाव से उर्मिला स्वीकार कर लेती है। और फिर जब भरत आता है तो भरत क्या करते हैं, भरत पूरा राज्य जो है, और जब राम स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या करता है, अपने राम कहते हैं आपकी पादुका और वो कहता है अगर आज अगर कहीं ऐसे होता है कि कोई बड़ा रईस व्यक्ति है और फिर उसके बाद में उसके दो, तो क्या होता है, बड़ा संघर्ष होता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो यहाँ पे भी संघर्ष था, पर संघर्ष क्या था, मुझे नहीं चाहिए तुम लोग, मुझे नहीं चाहिए तुम लोग। तो सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉर्मली कॉज्ड बाय सेल्फिशनेस, बट हियर द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राम एंड लक्ष्मण सेल्फलेसनेस। अगर दो भाई में झगड़ा हो रहा है ऐसे और एक अपने चप्पल निकाल के देता है, दूसरा भाई चप्पल लेकर उसके सिर पे मार, पर यहाँ पे लक्ष्मण क्या करता है, भरत क्या करता है, भरत भी उसी तरह से रहता है राज अयोध्या के बाहर, जो जो एक नंदीग्राम नाम की जगह है वहां पे एक झोपड़ी में रहते हैं। तो जैसे वनवास में राम रह रहे उसी तरह से भरत रहता, तो भरत को ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये जो है का भाव है, और उसमें है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना क्या महत्वपूर्ण है कि जो मेरा कर्तव्य क्या है, और उसमें तो उसी तरह उसी भाव से जब सीता के प्रति कुछ अफवाह फैलने लगती है, तो पहले ही जहां तक अफवाहों को दूर करने का प्रयास है राम ने पहले ही किया है, क्योंकि सीता ने अग्नि परीक्षा से पास जा चुकी है, पर फिर भी जब आते हैं तो अभी राम और सीता ये देखते नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ पे भाव है त्याग का भाव है। तो अगर त्याग का भाव है तो सबसे पहले राम देख देखभाल मुझे करनी है, ये दोनों भूमिकाएं है, ये दोनों भूमिकाएं नहीं निभा पा रहा हूं मैं। तो क्या होता है हमारी संस्कृति में कि जो सारी संस्कृति जो है उसका उद्देश्य होता है कि हम आध्यात्मिक प्रगति करें, और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए अनासक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है। अनासक्ति ही नहीं, वास्तव में जो नैतिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, उसके जो भी है उसके प्रति अनासक्ति यह जरूरी है। तो इसलिए अभी सब साधारणतः जो लोग होते हैं वो भौतिकवादी होते हैं, भौतिक भोग करना चाहते हैं। तो जो भौतिक भोग करने के लिए सबसे अधिक सुविधा जो होती है वो राजा के पास होती है, और इतना सारा भोग करने की सुविधा होते हुए भी अगर राजा अनासक्त तो फिर उससे सारे प्रजा पे एक बहुत प्रभाव होता है। ये ऐसे राजा अनासक्त मतलब राजा कोई भिखारी से रहता है ऐसे नहीं, राजा की अनासक्ति क्या है, तो इसीलिए जो राजा होते हैं वह बड़े सिंहासन पे बैठता है, पर जब कोई ऋषि आता है तो वो उनके चरण कमलों में झुकता है। तो जो भौतिक ऋषि देखे तो अरे ये तो भौतिक ऋषि देखेंगे तो उसको कोई आदर नहीं देगा, पर जो लोग देखते हैं मतलब ये ऋषि मुनि बहुत बड़े लोग होने चाहिए। तो राजा के धर्मनिष्ठता से समाज को एक उदाहरण मिलता है, सारा समाज भी धर्मनिष्ठ रहता है, यथा राजा तथा प्रजा जैसे कहा गया है। तो अभी ऋषि रामचंद्र जो थे उनको धर्मनिष्ठता दिखानी थी कि वह आसक्त नहीं, उनका एक काम करने, दूसरा कर्तव्य है कि अपने प्रजा को उन्हें दिखाना है कि कैसे वो धर्मनिष्ठ है, कैसे व्यक्ति को अनासक्त रहना है। तो अभी ये दोनों कर्तव्य साथ में नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं वो त्याग करके जो ऊंचा कर्तव्य के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य है वह। और इसमें ऐसे नहीं है कि राम सीता को ठुकरा देते, अभी वनवास ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पर फिर भी वनवास भी अलग अलग पद्धति का होता है। जब राम को वनवास में भेजा जाता है तो वो पूरे राज्य के बाहर जंगल में कुछ भी नहीं है ऐसी जगह पर जाकर रहना पड़ता है, पर जब राम सीता को भेजते हैं तो वो वाल्मीकि लक्ष्मण को बोलते हैं कि वाल्मीकि आश्रम के पास में ले जाओ, और वहां पे वाल्मीकि के आश्रम में अनेक वो वहां पे ऋषि मुनि होते हैं और अनेक वरिष्ठ स्त्रियां भी होती, तो वो सीता को एक पुत्री के रूप में स्वीकार करके उसका देखभाल करते हैं वहां पे। तो जो राम वनवास में जाते हैं पूरे जंगल में रहते हैं पूरे राज्य के बाहर, वैसे नहीं है, वाल्मीकि मुनि का आश्रम जो होता है वो राम के राज्य में ही होता है। तो एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष पद्धति से जो सीता अभी तक राम के संरक्षण में ही है, क्योंकि वो राम के राज्य में ही है, पर वो उनके परिवार में उनके महल में नहीं है अभी। और यहाँ पे जो ये त्याग का भाव है, इससे जब ऐसे पता चलता है सीता को बड़ा दुख होता है, सीता का जो दुख होता है वो बड़ा गिरा। उसके बाद में सीता स्वीकार करती है उसको, वो समझते है कि भले भी दुख हुआ है, मैं जानती हूँ राम ने ऐसे क्यों किया, राम मुझे नहीं ठुकरा रहे हैं। और ये राम ये केवल सीता का त्याग नहीं है, ये राम का भी त्याग है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि राम सीता को ठुकरा देगा कोई और किसी और उनके पास ये शक्ति थी और पत्नी दे सकते, पर उन्होंने सीता को बताया था कि मैं एक पत्नी वत रहूंगा, तो वो वैसे ही रहते हैं। और न केवल उनका शक्ति थी, कुछ लोग कह सकते उनका कर्तव्य भी था, क्योंकि जब यज्ञ करने होते हैं तो यज्ञ करने वाले जो यजमान होते हैं तो पति पत्नी दोनों साथ में बैठ के यज्ञ में यजमान के रूप में वो आहुति देते हैं। तो रवि राम को पता था कि आप तो राजा हो, आपको यज्ञ करना है तो आपको पत्नी जरूरी है, तो पत्नी नहीं होगी तो आप ये यज्ञ उचित रूप से नहीं कर सकते। तभी भी है तो राम यह जो है यह जस्टिफिकेशन यह कारण देकर वो बोल सकते थे कि पर क्योंकि धार्मिक करता हूं इसलिए मैं, पर वैसे भी राम नहीं करते हैं, कहे वो क्या करते हैं सीता की एक सोने की मूर्ति बना लेते हैं वो अपने। तो ये जो त्याग का ये अगर हम ये देखते हैं कि राम ने सीता के प्रति अन्याय कर दिया, उसको त्याग कर दिया, उसको ठुकरा दिया, तो वह हम पूरी कहानी नहीं देख रहे, केवल सीता का त्याग नहीं है, राम सीता से अभी भी प्रेम कर देते हैं, और वह जो सीता से विरह है उससे सीता को दुख होता है, राम को भी दुख होता है। और भले ही राम महल में रह रहे हैं, सीता जंगल में रह रही है, पर राम सीता की जगह पे किसी और को नहीं लाते। तो इस लीला को अगर हमें समझना है तो हमें देखना है कि यहाँ नहीं है, यहाँ पे न्याय अन्याय का सवाल नहीं है, यहाँ पे और ऐसे नहीं है कि जो राम शास्त्र में बताया गया है वैसे का वैसा हर प्रसंग में। तो इसका मतलब क्या है कि शास्त्रों में जब भी उदाहरण देते हैं तो वो उदाहरण काफी एक्सट्रीम, काफी जो विलक्षण उदाहरण देते हैं जिससे तत्व जो है उसका हमें सिखाया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि भागवत में वर्णन आता है अजामिल का, कि अजामिल बड़ा ही पतित हो जाता है पर वो एक नारायण का नाम लेता है और उससे क्या होता है, यमदूत। तो अभी यहाँ जो परीक्षित महाराज भागवतम सुन रहे हैं, तो परीक्षित महाराज सुन के ये नहीं कहते हैं अरे एक नाम लेने से बच जाते हैं, तो मैं आ जाएगा तभी मैं नारायण बोलूंगा, ऐसे नहीं कहते परीक्षित महाराज। क्यों नहीं, क्यों ना हो हरिनाम ले लेता है तो उसका पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब भी पूरे जीवन में पाप करें और फिर अंत के जब हम नहीं उसका तो वहीं पे अच्छा वहीं पे क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य बताते हैं कि हमें भाव क्या होना चाहिए। अजामिल ने वो भगवान को संबोधित करके नाम नहीं ले रहे थे, वो अपने पुत्र को संबोधित करके नाम ले रहे थे। उन्होंने एक बार अनजाने में नाम साधना के रूप में भगवान को संबोधित करते हो जब करते हैं तो हमें क्यों कृपाएं मिलेगी। तो यहाँ पे उदाहरण क्यों दिया है कि शास्त्र में जो उदाहरण देते हैं वो वही हमारे जीवन में उतारते हैं। जैसे हम ऐसे नहीं करेंगे जब कर रहे साधारण पद से रोज नियमित, तभी हम प्रेरणा ले सकते हैं कि अरे एक नाम में इतनी शक्ति है तो मैं इतने नाम जरूर भी भगवान में कृपा करेंगे। तो जो को उसको एक उसका वृत्तांत देने के लिए, उसका उदाहरण देने के लिए शास्त्र के बाद हमें जो सिद्धांत जो है वहां पे उसी तरह से नहीं है कि कोई भी पिता अपने पुत्र को बोले कि तुम जंगल में चले जाओ, मैं मेरा जो जायदाद है इसको देना चाहता हूं। तो जो दशरथ महाराज ने किया वैसे हर पिता नहीं करता चाहिए, वो उसी तरह से हर भाई को ऐसे नहीं करना जरूरी है कि उसके भाई को कुछ परेशानी आ गई है तो वह भी उसके साथ जंगल में चला जाएगा दूसरा भाई। तो जो हर एक चीज रामायण में की गई है वैसे हम हर एक को करने की अपेक्षा नहीं रखते। तो वैसे ही ऐसे नहीं है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने जो सीता के साथ किया वही लोगों ने अपने पत्नी के साथ करना है, ऐसे कभी नहीं है। रामायण का वह उद्देश्य नहीं है, रामायण की और वो त्याग का भाव है, निस्वार्थ भाव जो है उससे जो भी संबंध है वह वास्तव में और बढ़ती होता है। जितना निस्वार्थ बनता है तो जो है हमें वो रामायण में दिखाई दे रहा है। और इसके अनेक चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, दो और कहानियां हैं देखो कैसे शास्त्रों में अनेक चीजें बताई गई है और कई बार पूर्व जन्म का भी संदर्भ बताया जाता है, पूर्व जन्म ऐसे हुआ था वैसे हुआ था उसके कारण ये जन्म में हुआ। तो एक्सप्लेनेशन है जो समझ है वह प्राथमिक है, वह द्वितीय है। लोगों को पता है और मैंने बहुत से लोगों को ये कहानियां बताई जिनको पूर्व जन्म में विश्वास भी नहीं होगा। तो पूर्व जन्म की कहानी बताकर उस पे अगर हम बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि जो है ये उनको समझ में नहीं आता, स्वीकार नहीं करते। यहाँ पे तो क्या है, त्याग का और निस्वार्थ भाव हम सब कहानी बताई गई है, दो कहानियां हैं, पूरा उसका विस्तार। पहली बात यह है कि एक बार भृगु मुनि की पत्नी जो होती है उनके प्रति, वो जो अपने घर में होती है, भृगु मुनि तभी नहीं होती, तो एक असुर होता है जो देवता का विष्णु का पीछा कर रहा होता है, बड़ा उसने विध्वंस किया होता है विष्णु में, और वो जब असुर होता है तो तभी वह असुर भृगु मुनि के घर में आता है, उनके आश्रम में आता है, और वो उनकी पत्नी से कहता है कि आप मुझे उनको आश्रय देते हैं, तो तभी विष्णु वहां पे आते हैं। विष्णु कहते हैं कि ये जो असुर है बड़ा खतरनाक, उसका वध नहीं कर सकते, तो बोलते कि नहीं ये बड़ा, ये तुम्हारा उपयोग करके ये बाद में तुम पे ही आक्रमण करेगा, तुम्हारा हाँ हाँ कर देगा, तो वध करना जरूरी है, नहीं कर सकते। तो उनकी पत्नी वो बीच में आती है, वो तो मार डालते हैं ताकि पत्नी पुनः जीवित हो जाती है, पर तभी ऐसा लगता है, तभी जो भृगु मुनि आते हैं वहां पे, तुमने ये क्या किया, तुमने मुझे मेरे पत्नी में बीच में आ गए, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी, तुम भी अपने पत्नी से वंचित हो जाओगे। तो राम कहते हैं कि वास्तव में ऐसे कुछ नहीं हुआ है, पर क्योंकि तुमने शाप दिया तो ब्राह्मणों का ये कहानी है, उसके कारण भी सीता और राम का विरह होता है, और ये सारी लीला उसके लिए। दूसरी कहानी है कि बड़ा खतरनाक असुर होता है, उसको ऐसे वो यासुर लोग क्या होते हैं, वो अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते, पर वो कुछ उल्टा पुल्टा करके अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो एक असुर क्या करता है, वर मांगता है मुझे कि जब तक लक्ष्मी और नारायण साथ में है तब तक मेरा वध नहीं होना चाहिए। सोचता है लक्ष्मी नारायण कभी तो मेरी मुक्ति भी कभी हो जाए, तो वो अलग हो जाते हैं, जब अलग हो जाते हैं उसके बाद भी युद्ध चलते रहता है, और फिर राम होते हैं, अभी ये बहुत हो गया, कहते हैं सीता को वापस, और वो कहते हैं कि राम को आपने बड़ा अत्याचार किया है, आपने राम आपने सीता के प्रति बड़ा अत्याचार किया है, मैं सीता को वापस लेके आना चाहता हूँ। तभी सीता कहती है कि सीता का भाव होता है कि ये जो लोग हैं हर छोटी छोटी बात पे संशय करते हैं, तो मुझे ऐसे लोग वापस नहीं आना है, और वह भूमि में पुनः चली जाती है। तो ये बात बताया गया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इस राम कोई यह कोई केवल ख्याति की बात नहीं है, यह कर्तव्य की बात है, त्याग की बात है, और इसीलिए जब शास्त्र है जब समझना है तो शास्त्रों का पूरा संदर्भ देख के समझना है। एक घटना होगा उससे हम शास्त्र को अच्छे से पूरे गलत फहमी में जा सकते हैं। जिस अर्थ भाव है वह प्रधान शिक्षा, हर व्यक्ति रामायण में कैसे निस्वार्थ है, आई स्पेशलिस्ट मतलब क्या, वो आईज नहीं आंखें नहीं, आई मतलब मैं, मुझे क्या करना है, मेरे लिए जो अच्छा है मैं करूंगा, और मुझे जो अच्छा लगता है होते हैं। तो एक भक्त ने मुझे एक मैगजीन में वो लिखा था कि नाउ अमेरिका हैज एंटर्ड अ पोस्ट मैरिटल एज। मैरिटल एज मतलब क्या, शादी के परे चले गए, शादी के परे मतलब वो अनासक्त, वो इतने रखते हुए शादी करते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सोचते हैं शादी करते है मतलब क्या हो गया, विवाह करते हैं मतलब हमें कर्तव्य आ गया, तो भोग चाहिए कर्तव्य नहीं चाहिए। ये क्या, ये एक उदाहरण है, मी फर्स्ट, मुझे जो करना है मैं करूंगा, और उसमें कुछ कर्तव्य। तो जो स्वार्थी भाव है वह आध्यात्मिक रूप से खराब है, भौतिक रूप से आनंद नहीं रहेगा अगर हम स्वार्थी। शिक्षा है, निस्वार्थ भाव की शिक्षा जो है वह क्या है, the Ramayana is all from me to be you. मैं से हम. अभी अलग अलग प्रकार में हम कौन है वो हो सकता है, अलग अलग हो सकता है. जब राम ने सीता को जन्म दिया, मैं और मेरी सीता को जंगल में भेजना, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजंस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेसनेस. इस भाव का उदाहरण है. सत्य भाव अगर हमारे जीवन में लाते हैं तो हमारे अंदर जो है वास्तव में अच्छा बन सकता है. और वही निस्वार्थ भाव हमारे भक्ति लाते हैं. भक्ति कैसे होती है, जब करते हैं जो चीज मुझे अच्छी लगती है तो मैं करूंगी. आज मूड आ गया मैं मंदिर जाऊंगा, आज मूड आया सत्संग में जाऊंगा, आज मूड नहीं जाऊंगा, आज मूड है शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, आज मूड नहीं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करूंगा. जब हम भक्ति ऐसे करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब यही है कि हम हमारा कोई भी महत्वपूर्ण संबंध है हमारे मूड पे नहीं रखते. अगर कोई माँ है सुबह उठ के बच्चा अगर रो रहा है इसका देखभाल मूड नहीं भी हो गए तो भी, अब जो हमारा मूड है आता है जाता है, पर हमारे कर्तव्य है हमारा मूड. तो उस तरह से हमारी जो भक्ति है अगर हम निस्वार्थ भाव पाते हैं स्वार्थ भाव से जब करते हैं भक्ति तो भगवान एक कृष्णा सीज नॉट जस्ट कृष्णा सीज आवर फीलिंग्स अबाउट आवर फीलिंग्स. मतलब क्या, कभी कभी मैं जब कर रहा हूँ बड़ा बोरिंग हो रहा है, कभी जब खत्म हो रहा है तो अभी हमारे मन पे हमारा बहुत नियंत्रण नहीं है. जो मन जो भावना है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो विचार आ रहा है कब खत्म हो गई, पर तभी हम भी बोलते हैं कब खत्म हो गया जल्दी खत्म कर दो इसको. तभी अगर हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे लग रहा है ऐसे भावना, पर मुझे ऐसा ऐसे भावना नहीं जाता हूँ मैं, ऐसे मैं वास्तव मुझे भक्ति के भाव से अपनी जगह नहीं कर पा रहा हूँ भगवान, तो मेरी मन में विचार आ रहे हैं, कुछ भावनाएं आ रही है, पर मुझे वह भावनाएं चाहती हैं उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, पर वो भावनाएं आ गई है इसका मतलब नहीं है कि हम बुरे भक्ति हैं. हमारे जो हम निस्वार्थ होता है मतलब क्या है, बड़ा कार्य करना है ऐसे नहीं. निस्वार्थ भावना मतलब क्या है, निस्वार्थ मतलब नहीं करते हैं. हमारे जो प्रिंसिपल्स है, हमारे तत्व जो है, हमारे जो मूल्य है उसके अनुसार हमारा प्रतिक्रिया होती है और वो भावनाओं को और अब उससे युद्ध करते हैं. ऐसा भाव आ रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करूंगा मैं, उससे युद्ध करती में जब है जब हमारा मन नहीं लग रहा है और भक्ति करते हैं तभी हम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि उस समय आप निस्वार्थ भाव में निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं. और फिर वो जो भक्ति आएगी वो धीरे धीरे भगवान जी कृपा करते हैं, उसका मतलब क्या होता है मन शुद्ध हो जाता है. मन जब होता है तो जैसे अलग अलग विचार जो आते हैं वो कम होने लगते हैं और फिर हम और सुदृढ़ होकर और संतुष्ट हर भगवान के करीब जा सकते हैं. सारांश में हमने आज चर्चा की कैसे है कि क्या एक रावण था, रावण केवल एक स्वार्थी व्यक्ति था और उसने राम ने भक्ति करने के लिए उसने ऐसे किया. जो राम के जीवन में हस्तक्षेप किया रावण के लिए नहीं किया, वो खुद तो और फिर रावण को उकसाया और अपना ही बदला लेने के लिए किया. और रामायण में राम सीता को वनवास में भेजते हैं, ख्याति की बात नहीं है, वो पूरा त्याग का भाव है वह दिखाया जा रहा है. राम ये नहीं सोचते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, रामायण नहीं करता है. रामायण में जो भाषा है रामायण की भाषा, हक मुझे राजकुमार बनना है, मुझे राजा बनना है, कहते हैं ठीक है मैं त्याग कर दूंगा मेरे पिता के वचन रखने के लिए. वैसे भी सीता जंगल में जाती है वो भी त्याग करती है, लक्ष्मण के साथ जाते हैं, वो भी त्याग करेंगे, वनवासी के जैसे ही होता है राजा कर राजा का कर्तव्य करते, वो भी त्याग का भाव है, त्याग का भाव है। ये पाठ में आता है, ऐसे नहीं है कि राम सीता को त्याग कर देते अपनी, ऐसे नहीं, क्योंकि राम दो कर दोनों को तो वो अपने जो जो बड़ा कर्तव्य जो है समाज के प्रति कर्तव्य है उसको प्रधान महत्व देते हैं, पर अपने जो पति के जो कर्तव्य उसको ठुकरा नहीं देते, वो सीता को जंगल में नहीं भेज रहे, सीता को अपने ही राज्य में रख रहे वाली। तो और इसमें ऐसे नहीं है कि सीता पे अन्याय हुआ है, अगर अन्याय का बात देखनी है, दुख का बात देखनी है, तो सीता को दुख है कि वो राम के साथ नहीं है, राम को और राम दूसरे, तो जो त्याग राम सीता से सीता से अपेक्षा कर रहे हैं उसी प्रकार का त्याग सिर्फ स्त्री का सवाल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वही जो स्त्री हो गया होता है सब राजस्त्रियों को राम कृष्ण अपनी पत्नी में जो है एक संदर्भ है, तो वह संदर्भ रामायण में जो त्याग का संदर्भ है और वही सब लीलाओं में दिखाया गया है, और ये जो त्याग और निस्वार्थ भाव है वह नहीं है कि हमें जो रामायण में जो किया है वह सब कुछ वैसे वैसे आजकल जो हमें करना है, उससे हमें जो मूल्य है वो सीखना है, मूल्य का अनुशीलन करना है। जैसे हम ऐसे नहीं करेंगे कि अजामिल ने मृत्यु के समय जब किया, हम भी जिंदगी में जो भी करना है परंपरा मृत्यु में करो, ऐसे नहीं करते। तो उस एक विलक्षण उदाहरण मूल्य वहां पे अजामिल की कहानी में है, कैसे है हरिनाम की इतनी महिमा है, हमें हरिनाम उसका मूल्य, सब हर बार रिश्तों में हक की बात, हमें त्याग का भाव होना चाहिए हैं बन सकते हैं। आजकल के समाज जो है वो सब लोग बड़े स्वार्थी है, आए तो उससे अपनी क्या है बहुत ही जरूरत नहीं है, तो रामायण की जो शिक्षा है वो निस्वार्थ भाव अगर भक्ति में लाते हैं तो हम भक्ति में और सुदृढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कैन हैव वन और टू क्वेश्चंस।
मे बी वन क्वेश्चन।
यस ब्रो।
तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण क्या महत्व
Okay. क्या तुलसीदास से वाल्मीकि जी कोई पुनरावतार है? तो देखिए जो वैदिक ग्रंथ थे वो संस्कृत में थे, रामायण भी संस्कृत में है, और जो संस्कृत है वह जन साधारण लोगों की भाषा नहीं थी, पहले भी नहीं थी और अभी कुछ सैकड़ों साल पहले भी नहीं थी। तो वही जो जो अलग उसमें तो ने जो ही उनके रामचरितमानस में दिया है, और इसके द्वारा जो है वो अपनी भाषा में जो लोग भाषा लोग साधारण संबंध जो इसीलिए बहुत तो अभी प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं, उसी तरह से रामचरितमानस को भी कोट करते हैं। उनका एक कोट है जो कहते हैं कि आप कि उसके आधार पर हमें कहना है कि तुलसीदास के रामायण उचित नहीं है, भाव क्या था कि अलग अलग ग्रंथ मत पढ़ते बैठो पहले। तो यहाँ तक कि जो पुनर्जन्म का सवाल है वह तो हमें वही श्रद्धा के बाद तो जो तुलसीदास जी के अनुयायी है वो शायद उसको स्वीकार करेंगे, दूसरे लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर जोर देने के। साधारणतः हमें क्या करना है कि जो भी रामायण की दूसरी दक्षिण भारत में कम है आध्यात्म रामायण, अनेक अलग अलग रामायण के दोहराए गए हैं, तो हमें जब देखना है कि जो मूल ग्रंथ है वह प्रधान है और बताया गया है, अगर उसके अनुसार शास्त्रों का जो ग्रंथ होता है उसका एक रस होता है, उसका एक उसका एक भाव होता है, उसकी कहानी होती है, तो जो दूसरे ग्रंथों में जो भी बताया गया अगर वो जो पहले वाल्मीकि रामायण बताया है उसके उसका ही और विस्तार है, एक है विपरीत जाना, दूसरा है विस्तार करना, तो विस्तार जो होता है वह हम स्वीकार कर सकते हैं, पर अगर कुछ उसके ऐसे वाल्मीकि रामायण में तुलसी रामायण में कुछ विपरीत है ऐसे में बात नहीं, मेरी बात ये बात नहीं है, मेरी बात यह है कि जो दूसरी रामायण की कहानियां हैं हम तुरंत उसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो अगर वो रामायण की कहानी के भाव के रामायण के तत्वों के विरुद्ध में कुछ बताया जा रहा है तो वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ वाल्मीकि कुछ रामायण ऐसे प्रतीत आया है उसमें ऐसे बताया गया है कि वास्तव में सीता जो थी वो रावण की पुत्री, वाल्मीकि रामायण में नहीं है ऐसे कुछ नहीं है, तो ऐसी जो चीजें हैं वो हम स्वीकार नहीं करते। पर जहां तक जो भी दूसरे बताया है जो राम की कथा का ही उसका कुछ खंडन, वैसे रामायण है उसमें महत्वपूर्ण क्या है, राम को एक आदर्श व्यक्ति, तो वाल्मीकि रामायण में राम के आदर्श चरित्र पे जोर है, क्या है क्या हर एक ग्रंथ का उद्देश्य होता है, तो अगर वाल्मीकि रामायण में राम तो इसलिए रामायण में राम बहुत है, तो हर एक जो अलग अलग ग्रंथ होते हैं उनका अलग अलग संदर्भ होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है, तो जहां तक वो पूर्व श्री रामचंद्र भगवान की श्री प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमा
चाहे 3 टाइम हरे कृष्ण नाम।